તારીખ 28/12/1991 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 449 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું સોનગઢમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 37
પત્રકાર દૂસરા પોસ્ટ કાર્ડનું ચલતા હૈ જ્ઞાની પુરુષ કા સમાગમ કા અંતરાય રહેતા હો ઉસ પ્રસંગ મેં બાર બાર વહ જ્ઞાની પુરુષ કી દશા ચેષ્ટા और वचन को वचन का वचन को निरखना निरखना मैंने अवलोकन करना स्मरण करना और विचार करने योग्य है। कहते हैं कि ज्ञानी प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा कोई प्रारब्ध योग से भिन्न भिन्न क्षेत्र में रहना होता हो तो उनकी दशा का अवलोकन करना, उनकी दशा में जो आत्मगुणवाचक चेष्टाएं होती है यानी पुरुष की मुद्रा में, यानी पुरुष के वचन के व्यवहार काल में, वचन व्यवहार काल में, ध्यान काल में और अनेक प्रकार के प्रसंग में, उदय प्रसंग में भी ज्ञानी पुरुष की जो चेष्टा है उसका भी अवलोकन करना कि कैसे वे अंतरंग में हर वक्त निरंतर अपना साध्य को साधते साधते प्रवर्तते हैं और साध्य को साधते प्रवर्त जो चेष्टा में जो अंतर पड़ता है उसका क्या प्रकार है उसका अवलोकन करना। कल बात तो चल गई थी थोड़ी गहराई से, ज्ञानी पुरुष की चेष्टा को निरखना, चेष्टा को अवलंबन करना मतलब क्या? जैसे कोई हमारे प्रति प्रेम लागणी व्यक्त करता है और हमारे भी प्रीति होती है इस पर, तो प्रीति रसप्रस होती है हमेशा, तो उस वक्त उसकी अनुपस्थिति में वो कितने भाव विभोर हुए थे, कैसे कैसे इनके भाव हो गए थे, बोलते बोलते कैसे हो गए, चलते चलते कैसे हो गए, बैठे बैठे कैसे हो गए, खड़े खड़े कैसे हो गए, कई प्रकार की चेष्टाएं जो लागणी की प्रीति की स्मरण में आ सकती है। वैसे ही ज्ञानी पुरुष की आत्मभाव सूचक चेष्टाएं होती है। क्या ज्ञानी पुरुष की भी आत्मभाव सूचक चेष्टाएं होती है? बात अवश्य है कि हमारा ऐसा अभ्यास नहीं होने से हमें शायद उसका पता नहीं चलता है, इसलिए हम कल्पना कर लेते हैं हमारे जैसे जैसे हमारी तरह बोलते हैं, हमारी तरह खाते पीते हैं, हमारी तरह बैठते रहते हैं, हम भी स्वाध्याय करते हैं, वे भी स्वाध्याय करते हैं, हम भी भक्ति पूजा करते हैं, वे भी करते हैं, आना जाना सब ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है। इनके हर कार्यों में आत्मभाव सूचक विशिष्ट प्रकार की चेष्टाएं, विलक्षण प्रकार की चेष्टाएं बनती है, सहज बन जाती है। जैसे गुस्से में गुस्से की चेष्टा होगी, क्रोध में क्रोध की चेष्टा होगी, और प्रेम में प्रीति वाली चेष्टा होगी। ये राग द्वेष से कोई विलक्षण प्रकार की चेष्टा होती है। जैसे गुस्सा होता है तो भी नेत्र में आता है, वो तो उतना ही क्षेत्र है आपका, और प्रेम होता है तो भी नेत्र से मालूम पड़ता है। नेत्र भी एक भाषा होती है, संसार में भी नेत्र की एक भाषा होती है। वैसे यानी कि मुद्रा में, यानी कि नेत्र में और ज्ञानी के हाल चाल में, बैठक में आत्मभाव सूचक चेष्टाएं होती है। नजर चाहिए अवश्य, उस प्रकार की हमारी नजर नहीं होने से शायद हमें मालूम नहीं पड़े, लेकिन एक विलक्षण प्रकार इसमें होता रहता है। नजर हो सानिध्य में रह करके तो उसकी अनुपस्थिति में, गैर मौजूदगी में उसका स्मरण आता है कि कैसे आत्मा की इसकी मस्ती होती है, कैसे मस्त रहते थे, कैसे मस्त होकर बोलते थे, कैसे आत्मभाव में, आत्मरस में विभोर होते थे। अनेक प्रकार की चेष्टाएं होती है।
नजर बहुमान आए तो ही नजर आती है।
हाँ, बिना बहुमान भक्ति ऐसी नजर खुलती नहीं क्या? बिना बहुमान अपनी तरह कल्पना रह जाएगी। कल्पना है ये एक पूर्वग्रह है क्या? कल्पना है ये एक पूर्वग्रह है, प्रेजुडाइस है। तुम पूर्वग्रह से देखेंगे तो कोई भी बात पूर्वग्रह के अनुसार ही नजर में आएगी। यही भाव होगा हमारा। इसलिए भक्ति का जो बात लिया है आगे भी, इसका यही कारण है। और ऐसे मुमुक्षु के अवलोकन के परिणाम भी भक्ति में वृद्धि पना करता है, और वृद्धिगत हुई भक्ति मुमुक्षु की नजर को साफ करती है, निर्मल करती है, दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, ऐसा बन जाता है।
स्वयं को फायदा करने वाली बात
है। हाँ बिल्कुल, ज्ञानी को फायदा नहीं, फायदा का सवाल ही नहीं है। जो निष्प्रह है, लिखा है लल्लू जी को, लोग विरोध करते हैं क्योंकि मैं ग्रस्त के वेश में हूँ, आप मुनि के वेश में हूँ, आप मुझे प्रणाम करते हो, लोगों में विरोध होता है। ये क्या साधु होकर के गृहस्थ को वंदन करता है, प्रणाम करता है, क्या उचित है? तो अनुचित है ऐसा लगता है। लोगों में थोड़ा ये विरोध हो गया संप्रदाय में, तो उन्होंने लिख दिया कि आप मुझे उतना बहुमान से पत्र में भी उपमा विशेषण नहीं डालें, में अपेक्षा भी नहीं है, और भाई में भी समूह के सामने वंदन नमस्कार के व्यवहार नहीं करे, ये सूचना कर दी थी। आपको नहीं करना है ऐसा, हमें तो अपेक्षा नहीं है, हमें तो आवश्यकता नहीं है, आप कोई गड़बड़ी होती है तो मत करो इस बात, ऐसा वो पत्र में आया है वो बात। स्मरण करना और विचार करना योग्य है। ऐसे समागम के अंतराय में, प्रवृत्ति के प्रसंग में, समागम का अंतराय रहता है तो उदय अनुसार दूसरी भी प्रवृत्ति, जैसा जैसा जिसको उदय होता है वो अपनी अपनी प्रवृत्ति में लगते हैं। प्रवृत्ति के प्रसंग में अत्यंत सावधान पना रखना योग्य है। अत्यंत सावधानपना मैंने कहा जागृति, सावधानपना मैंने जागृति कि मुझे किसी भी उदय के प्रसंग में तीव्र रस से कार्य नहीं करना है। ये मेरा जहां भी हमारा नुकसान हो वहां सावधानी रखनी चाहिए। ये तीव्र रस होता है, हमारा नुकसान है। अभिप्राय तो बिल्कुल राग करने का है ही नहीं, लेकिन जब परिस्थिति राग वाली दशा की है तो राग तो अनिवार्य रूप से होगा, प्रवृत्ति भी होगी, लेकिन रस को जागृति से कंट्रोल करना ये हमारे बस की बात है। यहां से ये लाइन चालू होती है। ज्ञानी तो निरंतर जागृत है, लेकिन मुमुक्षु को जागृति का प्रयास चालू कर देना चाहिए, और जितनी जागृति उतनी मुमुक्षुता समझो। जागृति कम है तो मुमुक्षुता कम है, जागृति नहीं है तो मुमुक्षा नहीं है, मुमुक्षुता ही नहीं है, ये बात है। कल ये बात चली थी कि उदय के प्रसंग में आए तो सावधान हो जाना, हम डेंजर जोन में आ गए, कुछ हमारे लिए खतरा है इधर, ये खतरा दिखना चाहिए। क्या है? सत्पुरुष के समागम के अंतराय में इनका स्मरण, इनकी चेष्टा वगैरह का स्मरण, इनकी मुद्रा वगैरह का स्मरण, इनके वचनों का स्मरण एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू ये हुआ कि हम हमारे उदय की प्रवृत्ति में लगेंगे, समागम नहीं है जब उदय में, तो उदय दूसरा प्रकार का, दो प्रकार का उदय तो रहता नहीं, या तो समागम है या तो समागम नहीं है। अब समागम नहीं है तो वो बात चलती है कि जब समागम का अंतराय है तो प्रवृत्ति के प्रसंग में अत्यंत सावधान पड़ा, पूरी सावधानी से हमें चलना है, क्योंकि एक तो समागम का बल नहीं है, एक तो हमारे पास ज्ञानी पुरुष नहीं है। ज्ञानी पुरुष की समीपता होते ही बहुत प्रकार का फर्क तो पड़ ही जाता है, लेकिन जब समीपता नहीं है तो उसका बल भी नहीं है हमारे परिणाम में, और समीपता हो तो मेरे समीप है, मैं इनके समीप हूँ, एक बल आता है इसका। एक तो समागम का बल नहीं, और दूसरा अनादि अभ्यास है, अनादि की आदत बन गई है हमारी, उलस करके पढ़ना, तीव्र राग से तीव्र रस से प्रवृत्ति हो जानी। वहां जहां अपना नुकसान का भय भी नहीं है, वहां नुकसान का भय नहीं लगता है तो तीव्र रस से प्रवृत्ति होती है, और रस है वो बड़ा नुकसान है, ऐसी जागृति आई तो रसमंद हो जाएगा। और मैंने तो ऐसा सुना है कि मैं तो ज्ञाता हूं, मैं फलाना फलाना नहीं हूं। क्या जैसे कोई घर को मुखिया होता है ना, उसको टेंशन ज्यादा रहता है, क्योंकि मैं सबसे मुख्य हूं, मेरी जिम्मेवारी है, ऐसा मुझे लगता है। जिम्मेवारी बांट दो, जिम्मेवारी बांट दो, में से लड़का हो, बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, पिताजी हो, जो भी, जैसे अपने पूजी सोगानी जी ने कहा था कि मैं तो पंगु हूं, क्या बोले घर में हूं, मैं तो पंगु हूं। पंगु किसको कहते हैं? उसका हाथ पैर नहीं होते उनका, यानी मैं तो काम करने लायक नहीं रहा, मेरे जो परिणाम है उसमें रस उतना नहीं है, तो मैं तो काम करने लायक नहीं रहा। काम तो कौन करता है? जिसको रस आता है वो काम करता है। मैं तो पंगु, दो टाइम रोटी खिला देना, जैसे पंगु को खिलाया जाता है वैसे। फिर भी काम लेंगे घर वाले तो कितना ले सकेंगे फिर, ऐसी बात हो गई थी। वो कितना अभ्यास शुरू से ही होगा, कितनी प्रैक्टिस होगी, कितना प्रयत्न होगा जब ये स्थिति में वो आए। ये भी एक इनकी दशा का अवलोकन करना ही करने योग्य है। ये तो बात ही दिन रखते हैं गोपाल जी। हाँ, जिम्मेवारी बांट देना और कह भी देना कि हम तो कम से कम जिम्मेवारी रखना चाहते हैं, अगर आप मुक्त कर देते तो पूरी नहीं रखने चाहते हैं, नहीं मुक्त करते तो थोड़ी बहुत बोझा उठा लेंगे, लेकिन ये आखिर में बोझा ही बोझा होता है, उसमें रस नहीं आता है।
इसके विपरीत मैं करता हूँ, अच्छा करता हूँ, इस प्रकार का भी मान लेते
हैं। हाँ, बहुत होने हुए बिना रहेगा नहीं। काम अच्छा हुआ, सफलता हुई तो एकदम रस बढ़ जाएगा, और सफलता नहीं मिली तो दूसरा दूसरे को ढूंढेगा कि किसने ये बाधा किया, किसने ये नुकसान कर दिया, किसकी गलती से ये हुआ, कैसे हो गया ये। अपनी गलती तो देखने का पहले से ही उनको आदत नहीं है, ये शोध खोद चल जाएगी। तो ये बहुत गड़बड़ी वाले परिणाम है, अच्छे परिणाम नहीं है। अत्यंत एक तो समागम का बल नहीं, दूसरा अनादि का अभ्यास है। अनादि ऐसे ही आदत बन गई है, ऐसी सहजाकार प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति कैसी है? अनादि का अभ्यास हो गया है, सहज रूप में करने लग जाते हैं, घुस जाते हैं उसमें, पूरे पूरे डूब जाते हैं। दुकान पर गए तो दुकान पर डूब गए नीलचंद भाई, घर पर आए तो घर पे घर में डूब गए। ये बात हो जाती, जागृति बहुत रखनी चाहिए। जागृति रखने से, जैसे जिससे जागृति नहीं रखने से, ऐसे सहजाकार प्रवृत्ति है और सहज ऐसा रस बढ़ जाने से जीव आवरण प्राप्त होता है। क्या होता है? जीव को यही आवरण डलता है, यही बंधन होता है, उसकी शक्ति पर आवरण आता है, निर्बल होता जाता है, और निर्बल होकर के फिर अधोगति में अवश्य अवश्य जाना पड़ता है। बुद्ध को भी कहते थे कि आज तो उनके उदय में डोम डोम संपत्ति वैभव दिखे, कोई है घर में ऐसा बोले तो जी हाँ जी हजूर करने वाले मिल जाएं, और आयुष्य पूरे होते एक सेकंड में उतना दुख में जीव चला जाता है। कहते थे कभी चिपकली आती है ना, उसके गर्भ में चला जाता है, कहीं ना कहीं ऐसे चला जाता है, बड़ा आदमी दिखता है कहाँ चला गया, तेरी जगते में पता नहीं लगा, इतना दीनहीन और दुखी हो जाता है, कोई इलाज नहीं है वहां से निकलने का। आवरण प्राप्त होता है, घर का काम, ज्ञाति का काम, ज्ञाति मैंने ज्ञाति जाति अपने जाति होती है ना, समाज, अपने समाज का काम, घर का काम, समाज का काम, और दूसरे ऐसे काम के कारण पड़ने से, ऐसा कोई दूसरे काम आ जाते हैं, उदासीन भाव से क्या कैसे जाना? उदासीन भाव से जैसे कोई कैदी को जेल में ले जाते हैं पकड़ करके, क्या कितना उत्साह होगा उनको, कोई घर पे या ऑफिस पे आ जाए पुलिस इंस्पेक्टर, तुम्हारा वारंट लेके आया हूँ, चलो कस्टडी में ले जाना है, कितने उत्साह से जाएगा। हाँ, पहले तो कल के अखबार में आ जाएगा, मेरी इज्जत, कल का तो कल होगा, लेकिन आज ही उनको पूरा पूरा इसका पूरा इज्जत का भूत तो पहले सवार हो जाता है। इस भूत है, फिर भूत आ जाने से भूत की तरह हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है, बेबस हो जाता है।
हाँ,
इसलिए कहते कि एक घंटे के बाद की चिंता नहीं करनी है हमें। हम तो एक घंटे बाद की भी चिंता नहीं करते, ऐसे लिखा है। कोई चिंता ही नहीं, अपना कुछ है नहीं, पहले तो चिंता किसकी। भय तो अपेक्षा वृत्ति से पैदा होता है, जिसको अपेक्षा नहीं उसको भय, भय क्या, कौन सा भय।
ये
तो हर जगह भेद ज्ञानी आएगा, सारा समय सार में सलंग सूत्र है, कोई जो भी वचन है ये एक एक मोती है, लेकिन इसमें जो सूत्र है वो सब भेद ज्ञान का है थ्रू आउट। ऐसे कारण पड़ने से उदासीन भाव से प्रतिबंध रूप जान करके, नुकसान कारक जान करके, आवरण का कारण है, आवरण का निमित्त है ऐसा जान करके प्रवर्तन करना चाहिए। ज्ञानी तो उतने उदासीनता से ये प्रवृत्ति में बैठते हैं, होते हैं, रहते हैं, कि उनको तो निर्जरा हो जाती है, ये प्रवृत्ति निर्जरा का कारण हो जाती है। एक जगह तो लिखा है कि हम निवृत्ति में जितनी निर्जरा शायद नहीं करते, उतनी निर्जरा हमने ये व्यवसाय करते करते कर ली है। इतना पुरुषार्थ में वो चलते थे। हाँ, एक बहुत तारीफ हो गई। कितने भाव के लंबे काल के, जो भी लंबे स्थिति के जो कर्म बंधन थे उनको अपकर्षण कर दिया या उनकी निर्जरा कर दी, बहुत काम हो गया ना, ऐसे परिणाम हुए कि एक भाव का बाकी रह गया, जो भी रह गया, फिर निर्वाण पर। हाँ, ऐसा ही होगा, वो भी ऐसे बहुत तीव्र पुरुषार्थी थे, दोनों धर्मात्मा तीव्र पुरुषार्थी थे। धर्मात्मा बहुत होते हैं, उसमें भी तीव्र पुरुषार्थी कम होते हैं। मुमुक्षु बहुत होते हैं, इसमें भी पुरुषार्थी कुछ एक होते हैं, वैसे ही धर्मात्माओं में भी तीव्र पुरुषार्थी कम होते हैं। उन्होंने साफ लिखा है कि बहुत हुए हैं धर्मात्मा, लेकिन हमारे जैसा उदय हो और हमारे जैसी परिणति हो ऐसा हमने कम देखे हैं, लिखा ऐसे हमने कम देखे हैं। याद तो नहीं है क्या क्या तू जमना हाथ पर पत्रों में क्या परिक्रक्ष मिल जाएगी। गेम करने 25 मार्च है तो ना। अपना 27-40 ઘણા ઘણા જ્ઞાની પુરુષ થઈ ગયા છે, તેમાં અમારી જેવો ઉપાધિ પ્રસંગ અને ચિત્ત સ્થિતિ ઉદાસીન, અતિ ઉદાસીન તેવા ઘણું કરીને પ્રમાણમાં થોડા થયા છે. મૂળ શબ્દ એમ કે જો હે ને ભાવભાઈ એટલે ગુજરાતી મેં બહુત બહુત જ્ઞાની પુરુષ હુએ હૈ ભૂતકાળ મેં, ઉસમે ભી હમારા જૈસા ઉપાધિ પ્રસંગ હો પર ઉસી એસે ઉપાધિ પ્રસંગ મેં મેં ઉપાધિ પ્રસંગ ભી બહુત હૈ, કારોબાર ભી બહુત બડા થા બમ્બઈ મેં, પર ઉસમે પ્રસંગ મેં અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતાએ બહુત તરહ કી પરિસ્થિતિ મેં ગડબડી ચલતી થી. હમારા જૈસા ઉપાધિ પ્રસંગ ઓર ચિત્ત સ્થિતિ ઉદાસીન સામને અતિ ઉદાસીન એસે જ્ઞાની પુરુષ પ્રાય કુછ બહુત કમ પ્રમાણ મેં હુએ હૈ. ઉપાધિ પ્રસંગ કે કારણ સે આત્મા સંબંધી જો વિચાર હૈ વો અખંડ રૂપ સે નહીં હો સકતા હૈ. હમારી ભી યે સ્થિતિ હોતી હૈ કે હમકો ભી અખંડ રૂપ સે આત્મ વિચાર નહીં ચલ સકતા, અથવા ગૌણપણે હોતા હૈ. એસા હોને સે બહુત સમય પ્રપંચ વિશે રહેના હોતા હૈ. પ્રપંચ મેને કારોબાર મેં ઇતના વિસ્તાર વાલા કારોબાર હૈ કે એક કામ પૂરા નહીં ક્યા તીન કામ ખડા હૈ સામને. એક કામ તો હાથ મેં લિયા પૂરા નહીં હુઆ, તીન આદમી લાઇન મેં ખડા હૈ કે મેરે સબ બાત કરના હૈ, આપસે મેરે ભી બાત કરના હૈ, મુજે ભી કામ હૈ, મુજે ભી જરૂરી કામ હૈ, એસા હૈ વૈસા. और उसमें तो अत्यंत उदास परिणाम हो गया होने से एक क्षण बार भी चित्त टिक सकता नहीं है, लगातार उपयोग देना पड़ता है और चित्त उसमें एक क्षण भी टिकता नहीं है. क्या कंट्रावर्सी कैसी होगी है देखो. जिससे જ્ઞાનીઓ ને સર્વસંગ પરિત્યાગ કરકે અપ્રતિબદ્ધપણે વિહાર કિયા હૈ. એસા હોના હોતા હૈ સંસાર મેં, ઇસલિયે જ્ઞાનીઓ ને ફિર ઇતના પુરુષાર્થ કર દિયા કે ચલો હમ તો સબકો છોડ દેતે હૈ, હમારા કામ નહીં હૈ ઇધર રહેને કા. એસા કરકે વો બાત અપના જો મુદ્દા થા વો ઇતના થા, તીવ્ર પુરુષાર્થ ભી બહુત કમ હોતા હૈ. हाँ बराबर हो सकती है, क्यों नहीं होगा. किसी भी प्रकार के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जीव अपना साधन कर सकता है, साधना कर सकता है, क्योंकि ये तो अंतर में होती है ना. भाई संयोग के पहुंच नहीं है इसमें. सुभाष भाई का देखो बहुत बुजुर्ग थे और डेथ बेड पर आ चुके थे, મૃત્યુ શૈયા ખડા હોને કા ઉનકો ખુદ કોઈ ઉમ્મીદ નહીં થી કે અભી મેં કોઈ ખડા હોકર કે કામ મેં લગુંગા સંસાર કા. અબ તો આયુષ પૂરા હોને કી ઉમર ભી હો ચુકી હૈ और शरीर भी बोलता है कि अभी कोई टिकने का परिस्थिति नहीं है शरीर का। और देहांत के 18 दिन पहले स्वानुभव कर लिया है पुरुषार्थ करके, सोते सोते अनुभव कर लिया। ये बात, बैठने की शक्ति नहीं थी, बोलने की शक्ति नहीं थी। मैंने हर हालत में काम तो नहीं सकता है।
मनुष्य जी आनुभानु लेने प्रवृत्ति में विशेष दड़ी जाए से, मनुष्य जी आनुभानु लेने प्रवृत्ति में वधारे पड़ी जाए से, नुकसान नु कारण है।
तो जितना रस लेबे उतना नुकसान बढ़ता है, आवरण बढ़ता जाता है। मेरे आत्मा को आवरण होता है, रस लेने से आवरण होता है, ये जो पता चले, नुकसान का ज्ञान होते ही रस टूट जाएगा। रस में नुकसान है, ज्ञान होते ही रस टूट जाएगा। ज्ञान ही पर्याप्त है उसको मारने के लिए। क्रिया से कोई मतलब नहीं। एक आदमी छरी लेकर खून करता है, पर एक डॉक्टर छरी लेकर ऑपरेशन करता है। उस कारणों को मुख्य करके कोई परिवर्तन करना नहीं चाहिए। ज्ञाति का काम है, घर का काम है, हमारा निजी काम है, हमारी जिम्मेवारी का काम है, ऐसा मुख्यता दे करके कोई काम नहीं करना चाहिए। गौणता कर देनी चाहिए। ठीक है, करना पड़ता है, कर लेंगे, बाकी हमारे परिणाम है उसमें लगते नहीं है, लगाना पड़ता है। ये हालत हो तो उदासीनता रहेगी, इसलिए उसको मुख्यता करके, मुख्यता दे करके प्रवर्तन करना नहीं चाहिए। और ऐसे हुए बिना प्रवृत्ति का अवकाश प्राप्त होता नहीं, प्रवृत्ति में से छूटने का कोई जगह मिलती। उदासीनता नहीं होगा तो लगे ही रहेगा, लगे ही रहेगा, काम तो आते ही रहेंगे। संसार में कहते हैं ना, हमारे गुजराती में ही कहता है कि व्यापार घरड़ो था तो नहीं। मैंने व्यापार को वृद्धावस्था नहीं आती कभी, आदमी को आ जाती है व्यापार करते करते। व्यापार को कभी वृद्धावस्था नहीं आती, वो कमजोर होता नहीं है। इसलिए जो प्रवृत्ति में से अवकाश ही नहीं मिलेगा, रस से करेंगे तो प्रवृत्ति में से अवकाश नहीं मिलेगा। सुगानी जी का तो ऐसा था, रमेश बाल वगैरह छोटे छोटे थे, डाल दिया था इनके, पढ़ो भी काम भी करो साथ में। शुरू से ही कलकत्ता है, उस वक्त साथ में 1952 में आए, 51 में आए, कुछ ऐसे आए, 51 में आए। हम तो कॉलेज में पढ़ते थे, पढ़ाई काफ़ी बाकी थी, काम में साथ में लेते थे बाजार, फिर नरेश भाई को लेते थे, जो भी एक दो काम बढ़ जाता है ना। और कुछ समझो कि पूर्व कर्म के उदय से हो या अपनी उदासीनता से या बेसावधानी से कुछ कमी बेसी भी हो जाती है तो हो जाती है, वो मंजूर है। लेकिन आत्मा को आवरण प्राप्त हो गए ऐसा नुकसान मंजूर नहीं है। संयोग का नुकसान मंजूर है, आत्मा को आवरण प्राप्त हो गए वो नुकसान मंजूर नहीं है। दो ही नुकसान है, देखिए, वो एक आत्मा में है, एक आत्मा से बाह्य है। अभी तुल किस किसके पर तुल देना है, वजन कहाँ रखना है।
हाँ,
विचार में जिसको दृढ़ता नहीं है उसका परिणाम आने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं। विचार में जिसको दृढ़ता नहीं है उसको परिणाम कहाँ से आएगा। परिणाम तो निर्विकल्प हो जाता है, विकल्प के बाद होता है।
चाबी,
मजूरी करा लेते हैं, ये सब अपने कब्जा में रखते हैं। तो ये शास्त्र में समय सर में उसको प्रकरणिक कहा है, प्रकरण और प्रकरणिक। प्रकरण में ने काम तो दूसरा दूसरा करे, और चोटी मेरे हाथ में, तो सारी उपाधि तो अपने सिर पर रह जाएगी। उसने बराबर काम किया कि नहीं, उसने नुकसान तो नहीं किया ने, वो तो बराबर हुआ कि नहीं, ये बराबर हुआ कि नहीं, करता है वो, टेंशन खुद पर आएगी। लेकिन देखना ही नहीं है, जैसा करा उसने उसका करा, मेरा तो है ही नहीं। क्या जैसा उसने करा वो उसका किया, मेरा तो किया ही नहीं, पूछे ही नहीं ने, आजकल तो बताएंगे नहीं। लेकिन अपने को भी नहीं पूछना, सावधानी नहीं रखना, और क्या।
सही मायने में तो आत्मा को आवरण आता है, ऐसा बुद्धि की नहीं होता
ना, वो विचार में ही चीज नहीं है। नुकसान दिखे और जीव हटे नहीं, बन सकता नहीं। एक 6 इंच का खड्डा देखे ना चलते चलते, तो पैर साइड में रखेगा, खड़े में पैर नहीं रखेगा, शायद मचक आ जाए। देखने से कौन पैर रखता है, कोई नहीं कर रखेगा। आत्मा को आगे लिखते हैं चौथे पत्र में, 3 पोस्टकार्ड हुए, तीसरा पड़ा भी, कि आत्मा को भिन्न भिन्न अभी विषय थोड़े बदलते हैं। ये कृष्णदास भाई कोई बहुत पुण्यशाली भाग्यशाली जीव दिखता है, बहुत सुंदर बातें लिखी हैं इसमें, कि वो सत्संग में आया हुआ जीव है और आत्मा की पहचान करने का उसका प्रयास होता है। जो सत्संग में आता है उसको स्वरूप निश्चय करना है, स्वरूप निश्चय करने को जाता है, उस वक्त स्वरूप निश्चय यथार्थ नहीं होता है और कुछ कल्पना बन जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण लिखा है यहाँ पर, लिखा है कि आत्मा को भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना द्वारा विचार करने में ऐसा विचार हो जाता है कि काल्पनिक विचार हो जाता है आत्मा के स्वरूप के विषय में। इसका क्या कारण है, ऐसा कल्पना होने का क्या कारण है, कि एक तो लोक संज्ञा, दूसरी ओग संज्ञा और तीसरा असत्संग, ये 3 कारण से आत्मा को निश्चय यथार्थ नहीं हो करके अयथार्थ निश्चय हो जाएगा, मैंने कल्पा काल्पनिक निश्चय हो जाएगा। ये बात मुमुक्ष के लिए बहुत मुद्दे की है। जो भी हमारे मुमुक्ष हैं, तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं श्रवण से या पठन से, पढ़ने से, उनको ये सावधानी बहुत रखनी जरूरी है कि यथार्थ निर्णय नहीं हुए वहां तक हमें जिज्ञासा में रहना है, काल्पनिक निर्णय में हमें सेटअप नहीं होना है। ये बात बराबर सतर्क होकर के रखनी है अपने विचार में, समझ में।
ज्ञानियों के विचार पढ़ते पढ़ते काल्पनिक विचार होते हैं, मैं तो जिनवाणी का ही करता है, फिर भी काल्पनिक विचार होते हैं।
हाँ होता है, तो कहते हैं कि आत्मा को भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना से विचार करने में ऐसा होने में कारण 3 प्रकार के हैं, लोक संज्ञा, ओग संज्ञा और असत्संग। तो बात क्या है कि ऐसा क्यों होता है, अब तो ये तो 3 भेद कहा, यथार्थ विचार नहीं हो करके यथार्थ कल्पना हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। ज्ञान में विचार में ऐसा क्यों हुआ कि हमारा तत्व ज्ञान का अभ्यास करने के पीछे जो हमारा हेतु है वो शुद्ध नहीं है। क्या पहले लिखा ना, शुद्ध चित्त से विदित हुई, शुद्ध अंतकरण से विदित हुई आपकी विज्ञप्ति चाहिए। ये पहली पंक्ति है इस पत्र के। अंतकरण शुद्ध नहीं है, या तो जीव लोक संज्ञा में खड़ा है, लोग में मेरी इज्जत ऐसी बनी हुई है तो कम तो होनी ही नहीं चाहिए, बढ़े तो बढ़ानी चाहिए। चाहे ये हमारे ज्ञाति हो, हमारा परिवार हो, या हमारा धार्मिक समाज हो, हर जगह हमारी इज्जत पर या लोगों की दृष्टि में हमारा जो स्थान है उस स्थान पर हम जहाँ तक वजन देते हैं, ये स्वरूप निश्चय के खिलाफ परिणाम है। क्या बात है, क्योंकि ये स्वरूप का अनिश्चय रूप परिणाम है। मैं तो ऐसा, लोगों की नजर में जैसा मेरा स्थान है मैं ऐसा, तो फिर मैं आत्मा नहीं रहा है। प्रतिपक्ष भूत परिणाम है, स्वरूप निश्चय के जो परिणाम है, स्वरूप के पहचान के जो परिणाम है, स्वरूप के लक्ष्य के जो परिणाम है, उसके प्रतिपक्ष भूत ये लोक संज्ञा है। बिल्कुल विरोधी भाव है, ये होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, ये बिल्कुल कंडीशन है ज्ञानियों के। ये लोक संज्ञा में तो खड़ा है, स्वरूप लक्ष्य नहीं होगा, स्वरूप लक्ष्य नहीं होगा, फिर आगे की आत्मा के सभी बातें तेरे लिए तो कल्पना युक्त हो जाएगी। और बुद्धिपूर्वक कल्पना हुई मतलब क्या हुआ है? क्या हुआ, ग्रहित मिथ्या हुआ। जो अल्लाह अकबर करता है ना, वो ग्रहित मिथ्या भी है। क्या, कौन से वर्ग में डाल दिया ज्ञानियों ने, ऐसा हो जाता बहुत जिम्मेवारी का काम है। तत्वज्ञान का अभ्यास कोई अगंभीरता से हाथ में लेने वाली चीज नहीं है, मतलब ये है इसका, बहुत गंभीरता से, कि या तो हमारा पूरा हित हो जाएगा, या तो इसी तत्व ज्ञान के माध्यम से हमारा बड़ा अहित हो जाएगा। उल्टा हुआ था, व्यापार में भी यही होता है, जिसको बड़ा व्यापार होता है नुकसान भी बड़ा, मुनाफा भी बड़ा। हाँ, तलवार की धार भी एकदम ही दोनों बाजू धार है, ऐसी तलवार पर चलना है। तलवार की धार पर तो चलना है, लेकिन दोनों बाजू तलवार की धार पर ऐसे इस तरह चलना है। थोड़ा मार्ग सूक्ष्म है, मतलब इतना सूक्ष्म मार्ग है। एक तो लोक समझना है, करीब करीब मिलता ही नहीं, यहाँ से गया गया कहाँ गया पता नहीं, क्योंकि अधोगति के तो परिणाम तो बहुत होते हैं। ये तीव्र रस से परिणाम हुए, क्या हुआ अधोगति के परिणाम है सर, एक सेकंड में कहाँ चला जाएगा पता नहीं लगेगा। अनंत अनंत जीव है, कहाँ गया कैसे, इधर कोई जानते नहीं, यहाँ से कोई पूग की चिट्ठी नहीं आती मैं यहाँ पहुँचा, बारगाम जाते नहीं कोई पूग लिख देना, क्या कहते हैं आप, पहुँच लिख देना, वहाँ चिट्ठी नहीं आती किसी की कि हम यहाँ पहुँचे हैं, कहाँ जाते हैं पता नहीं। ये इतना समुंदर है, ये समुंदर छोटा है, जीवों का समुंदर है, खिचाखच भरा है, इधर निगोद के जीव भी खिचाखच भरा है, पूरे चौ ब्रह्मांड में भरे हैं। ये तो एक गति है, एक एक मैंने एकेंद्रीय की बात है, विदो इंद्री में इतने, तीन इंद्री में इतने, उतने हैं, कोई हिसाब नहीं है, कहाँ गया कोई पता नहीं। दर्शनों के बलवान बलवत्तरता है क्या, दर्शनों की बलवत्तरता है, तगड़ा दर्शन में होने से कुछ असर नहीं आती है, बोध की असर नहीं आने का क्या कारण, दर्शन में तीव्र है यही कारण है। बहुत साफ साफ बात है इधर तो बस अपना आत्महित की तीव्र भावना में ही दर्शन में बल जाता है, इसलिए पूर्णता का लक्ष्य लिया गया, मुझे अधूरा नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन चाहे उतनी बात नहीं है, पूर्ण सिद्ध पद लेना है और इसके पीछे हमारा, इसी के अनुपात में हमारा प्रयास है।
टाइम कम है ऐसा लगता ही नहीं, समय मेरे पास कम है इतने बड़े काम करने को, ये लगता
ही नहीं है, इसलिए इधर उधर परिणाम चला जाता है और समय आयु का निकल जाता है। ये प्रयोजन सिद्धि यही सारा प्रकरण है, कैसे दर्शन हो कटे इसका तो सारी छोटी सी किताब इसके पर, ये प्रयोजन सिद्धि तो पढ़ा आपने, हाँ इसमें भी अपने को कौन सा लागू होता है वो लेना है। हाँ तो बहुत सी बातें लिखी है कि इस प्रकार से दर्शन में बढ़ता है, इस प्रकार से घटता है, इस प्रकार से बढ़ता है, इस प्रकार से घटता है, लेकिन हम कौन से प्रकार में हैं ये हमारे प्रयोजन की बात है। ओग संगना, ओग संगना मैंने अंधश्रद्धा से चलना, उसका तल में नहीं जाना क्या, हर बात में पूरे पूरे हम तो जहाँ भी काम करते हैं, जिस काम करते हैं उसमें तो उसका तल पकड़ लेते हैं, ओग संज्ञा से धर्म के विषय में ऊपर ऊपर से चलना, जैसे रूढ़ी हो गई, रिवाज हो गया, चलो मंदिर में जाने का टाइम हो गया, चलो स्वाध्याय में जाने का टाइम हो गया, चलो भक्ति में जाने का टाइम हो गया, जैसे खाने का टाइम हो गया, ऐसे नहीं चलना चाहिए, ये योग संज्ञा है। और ऐसे सत्संग अवगुणी जीवों का संग नहीं करना, अवगुणी जीवों का, जो सच्चे देवगुरु शास्त्र को नहीं मानते उनका भी संग नहीं रखना, और सच्चे देव गुरु शास्त्र के मानने वाले हो इसमें भी जो विराधक प्रवृत्ति करते हैं इसका संग नहीं करना, और जो भी मुमुक्षु लोग हैं उसमें भी जो ऐसे पूर्णता के भावना वाले नहीं हैं जिसको एक आत्मकल्याण ही करना है उसका संग करना, जिसको ऐसा इरादा नहीं है मतलब कुछ दूसरा इरादा है उसका संग करने लायक नहीं, वो ऐसा सत्संग है। हाँ पूरा का पूरा सब कट जाता है, तो परिवार में भी ऐसा सत्संग होता है, बाजार में भी ऐसा सत्संग होता है, और मुमुक्षुओं में भी ऐसा सत्संग हो जाता है, हर जगह सावधानी और सतर्क हो जाना चाहिए, जागृत हो जाना चाहिए, जब भी स्वरूप निश्चय होगा भाव भाषण तभी होगा, इसके पहले भाव भाषण होने वाला नहीं है, ये तीन कारण से छूटे तभी तो भाव भाषण होवे, वरना भाव भाषण नहीं होगा। विशेष लेंगे थोड़ा समय,
समूह